ज्ञातारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तदगुणलब्धये। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, दस लक्षण महापर्व की, आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि महाराज की। आज अपन पर्युषण पर्व की शुरुआत कर रहे हैं। दो शब्द एक साथ सुनने में आते हैं, पर्युषण पर्व और दस लक्षण पर्व। दोनों के अर्थ लगभग एक से हैं और बहुत साफ हैं। संस्कृत में पर्युष शब्द सुबह होने के अर्थ में आता है और पर्युषण का अर्थ है भोर हो जाना या कि सुबह हो जाना। ये जो रोज सूरज उगता है और सुबह होती है, उस सुबह का लाभ तो प्राणी मात्र को होता है, लेकिन ये धर्म की सुबह है। धर्म का सूरज उग जाता है तब भव्य जीवों के लिए ये पर्व की तरह होता है और पर्युषण पर्व, इसीलिए इसका नाम रखा गया। दो गांठों के बीच में एक कोर होता है। गन्ना देखा होगा, गन्ने में दो गांठें होती हैं, दो गांठों के बीच में एक कोर होता है। रस गांठों में नहीं होता, रस उस कोर में होता है, उसको पर्व भी बोलते हैं। तो पर्व का अर्थ है रस वाला भाग, दो गांठों के बीच। संसार में राग और द्वेष की इन दोनों गांठों के बीच जब हम थोड़ा सा अपने जीवन में कोई जीवन का रस पाना शुरू कर देते हैं, जिन दिनों में वे ही दिन पर्व के दिन कहलाते हैं। अपने जीवन का रस पाने के दिन हैं। राग द्वेष की गांठें तो दोनों तरफ है ही संसार में, लेकिन उसके बीच में से भी जब हम जिस दिन भी हम अनाशक्त होकर के अपने आत्मा का आनंद पा लेते हैं, वो ही दिन हमारे लिए पर्व की तरह कीमती हो जाता है। तो ये दस दिन हमें अपने जीवन का जो आत्म आनंद है उसको पाने के लिए रखे गए। ये दस दिन तो ऐसे हैं कि जैसे 365 दिन में से हमें अपने जीवन को अगर संभालने के लिए हो तो दस ही दिन हैं। आत्म जागृति के लिए ये दस दिन है। दस दिन हम अपने को इतना रोटेशन में ले लें, इतना गतिशील हम हो जाएं हमारे ये दस दिन, कि ताकि वो 355 दिन फिर इसके सामने हम उनमें पापों में ना फंस पाएं। ये दस दिन इतने हमारे जागृति के दिन हो कि 355 दिन हम अपने को सेव कर सकें। शायद इसलिए ये पर्युषण पर्व आता है। एक परिकल्पना की गई है कि जब प्रलय हो जाता है तब 49 दिन तक खराब वृष्टियां हुआ करती, फिर उसके बाद फिर से सृष्टि फिर से डेवलप होना शुरू होती, फिर से विकास होता है। तो विकास होता है तब भी 49 दिन तक सात प्रकार की सात सात दिन वृष्टियां होती हैं। ये 49 दिन बड़े कीमती होते हैं, क्योंकि उसके बाद 50वें दिन जाकर के जीवन की शुरुआत होती है। जीवन का पृथ्वी पर फिर से संचार होता है। जो कि अस्त व्यस्त हो गए थे वो गुफाओं से निकल करके 72 जोड़े और हजारों जो लोग बच गए हैं वो सब निकल के आते हैं 50वें दिन और फिर वो शुरुआत करते हैं, जीवन की शुरुआत होती है। तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमने जिस दिन यहाँ पर स्थापना करी थी वो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी थी और आज चौथ है। आप थोड़ा सा काउंट करें, आज 50वां दिन है। 49 दिन बीत जाने के बाद 50वां दिन शुरू हुआ है। ये उसी का इमेजिनेशन है कि अब हमारे जीवन में 49 दिन अच्छी वृष्टियां होने के बाद फिर से जीवन में संचार हो रहा है, वो उस बात का प्रतीक है। तो ये पर्युषण पर्व ऐसे 49 दिन बीत जाने के बाद 50वें दिन शुरू हुए। एक हाइपोथेटिकल आंसर ये भी हो सकता, पर ये एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है, कहीं पर इस तरह की चीज लिखी नहीं गई है। पर एक अपन अप्रोप्रिएट आंसर दे सकते हैं इस चीज का। तो ऐसे पर्यूषण और जहां 10 दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो गए हों उनके द्वारा जो व्रतों का पालन किया जाए वे सब 10 लक्षण व्रत या कि 10 लक्षण धर्म कहलाते हैं। 10 दिशाओं को जिन्होंने अपना वस्त्र बना लिया ऐसे तो दिगंबर साधु ही हुआ करते हैं, उन दिगंबर साधुओं के द्वारा जिन 10 धर्मों का विशेष रूप से पालन किया जाता है वे ही 10 लक्षण धर्म या कि 10 लक्षण पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। दसों दिशाएं जहां पर हमारे लिए अपनी हो जाती हैं, हम किसी भी दिशा में किसी भी जीव राशि के लिए पीड़ा देने से बचते हैं और सारी दिशाओं से अपने को समेट लेते हैं। फिर हम बाहर की यात्रा पर नहीं निकलते कि किस दिशा में हमें यात्रा करनी, दसों दिशाओं की यात्रा जहां रुक जाती है और अपने भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। ये 10 लक्षण पर्व इस बात के प्रतीक हैं। तो विशेष रूप से भाद्रपद में ही क्यों मनाते हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए फुर्सत भी रहती भाद्रपद में। वैसे तो 3 बार आता है ये 10 लक्षण पर्व 4-4 महीने के बाद 10 दिन के लिए, पर विशेष रूप से भाद्रपद में जीव राशि का घात होने की ज्यादा संभावना होती है, इसलिए हम अपनी क्रियाओं को इन दिनों में सीमित कर लेते हैं। दूसरा ये कि मुनि जनों के चतुर्मास इन दिनों में होते हैं तो उनके सानिध्य में हम अपने जीवन में एक गति दे पाते हैं, इसलिए भी हम इन 10 दिनों को ज्यादा अधिक उत्साह के पूर्वक मनाते हैं। और फिर फुर्सत भी रहती है, लोगों के काम धंधे भी उतने ज्यादा नहीं होते हैं तो आदमी को समय भी रहता है तो वो अपना यूज करता है इस तरह से। सवाल ये नहीं है कि आप इन्हीं दिनों में क्यों करते हैं, सवाल ये है कि आप इतना भी कर पाते हैं। चाहे वो कोई भी दिन हो हम कर पाए ये ज्यादा कीमती है। इसलिए इस तरह पर्यूषण और 10 लक्षण के अर्थ हैं। इन दिनों में विशेष रूप से क्यों तत्वार सूत्र का ही अध्ययन करते हैं, तो मानिएगा कि ये 10 लक्षण हमें मोक्ष और मोक्ष मार्ग इन दोनों का उपदेश देने के लिए आते हैं, और तत्वार सूत्र 7 तत्वों की विशेष रूप से व्याख्या करने वाला, जिसका पहला सूत्र ही है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यहां से शुरू होता है मोक्ष और आखिरी में जाकर के कहते कृष्ण कर्म प्रमोक्षो मोक्ष, सारे कर्मों का नाश हो जाने का नाम ही, सारे कर्मों का अभाव हो जाने का नाम ही मोक्ष है। जहां मोक्ष मार्ग से लेकर के मोक्ष तक की पूरी व्याख्या की गई है वह ग्रंथ इन दिनों में विशेष रूप से लोग पढ़ते हैं। भैया अर्थ भले ही समझ में ना आए लेकिन श्रद्धा के साथ पढ़ना ये भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। प्रश्न मन में उठ सकता है कि तत्वार सूत्र अकेले 5 लेने से क्या होता है, तो तत्वार सूत्र 5 लेने से अगर श्रद्धा पूर्वक कोई बांचता है पढ़ता है तो उसका मोक्ष मार्ग और मोक्ष भले ही उसका न बन पावे लेकिन उसकी भूमिका तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की बन ही सकती है, उसकी श्रद्धा उसकी भूमिका बनाने के लिए सहयोगी हो सकती है। इसलिए इसके लिए पढ़ते हैं आज ये मानकर चलें। पता नहीं किसके जीवन में सुबह हुई कि नहीं, पर मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आज हम सबके जीवन में धर्म की सुबह हुई है। और जब पहली बार कोई आदमी सुबह का एहसास करे, जिसने कभी जीवन भर सूरज को उगते ना देखा हो, जिसके जीवन में हमेशा अंधेरा रहा हो, उसको अगर पहली बार सूरज देखने मिले या कि उसको सुबह का एहसास हो तो कैसा लगेगा। शायद वो यही चाहेगा और हम और आप भी यही चाहेंगे कि ऐसा हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, ये ऐसी सुबह हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे, ये भोर हमेशा होती रहे, ये उजाला हर तरफ हमारे हमेशा रहा है, कौन नहीं चाहेगा। तो ऐसा ही जो है एक भव्य निकट भव्य, आचार्य महाराज लिखते हैं पूज्यपाद स्वामी कि एक निकट भव्य किसी वन में विराजे हुए अपने शरीर से ही मोक्ष मार्ग का प्ररूपण करने वाले अभाग विसर्गम बपुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गम आचारी वर्यम, ऐसे आचारी महाराज के समीप जाकर के वो प्रश्न करता है कि किमनु खलु आत्मने हितम स्यात् इति, हे भगवन मुझे बताएं कि मेरे आत्मा का सुख किसमें है। तो छोटा सा जवाब देते हैं कि तुम्हारे आत्मा का सुख मुक्ति में है, मोक्ष में है। तब फिर दूसरा प्रश्न वो करता है कि तब मुझे उस मुक्ति पाने का उपाय क्या है, व्हाट इज द पाथ ऑफ लिबरेशन, क्या है वो रास्ता जिससे कि मैं लिबरेट हो जाऊं, जिससे कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं और मुक्ति का आनंद पा सकूं। जब मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि सुबह इतनी अच्छी है तो जहां पर हमेशा ही सुबह रहती होगी ऐसे उस मोक्ष में मैं कैसे पहुंच पाऊं, तो पाथ ऑफ लिबरेशन बताने के लिए, मोक्ष का मार्ग बताने के लिए यहां से शुरुआत होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों एक में होकर के मोक्ष का मार्ग बनते हैं। द वे इज वन, एक ही है मार्ग, ये तीनों अलग अलग मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं है, सम्यक चारित्र अकेले से भी मोक्ष नहीं होने वाला। जब भी होगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, एक ही वचन रखा हुआ, द वे इज वन, इन तीनों की ट्रिनिटी, ये तीनों के मिल जाने पर एक मोक्ष का मार्ग बनता है। हमारा जब तक विश्वास सच्चा नहीं होगा, हमारा ज्ञान या बोध सच्चा नहीं होगा और हमारी अनुभूति सच्ची नहीं होगी, जब ये तीनों चीजें एक साथ नहीं होंगी तब तक हमारा मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। कोई ये सोचे कि सम्यक दर्शन और ज्ञान इतने मात्र से हम मोक्ष मार्गी हो जाएंगे तो आचार्य भगवान कहते हैं कि नहीं हो पाओगे। कोई ये सोचे कि मैं अच्छे से अच्छा आचरण कर लूंगा तो मोक्ष मार्गी हो जाऊंगा, तो वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन और ज्ञान के बिना तुम्हारा आचरण सम्यक ही नहीं हो सकता और तुम्हें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीनों एक साथ मिलने पर ही मोक्ष मार्ग बनता है। और कोई ये सोच में बैठा हुआ हो कि उसका मोक्ष मार्ग अनायास उसको मिल जाएगा, तो हम लोग ऐसे अनायास वाले लोग नहीं हैं। हम लोग सब श्रम करके और श्रमण बन के अपनी आत्मा की उपलब्धि करने वाले लोग हैं। हम प्रयास से सब कुछ प्राप्त करते हैं, किसी की कृपा पर हमें कोई भरोसा नहीं है। यहां कृपा से कुछ नहीं मिलता है, यहां अपने पुरुषार्थ से मिलता है। या तो श्रम करो या श्रमण बनो, दो ही उपदेश है। श्रमण इसी बात का प्रतीक है कि जो निरंतर अपनी आत्म उपलब्धि के लिए अपने भीतर परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, मोक्ष पुरुषार्थ करता है। मोक्ष अनायास नहीं होता, मोक्ष पुरुषार्थी के लिए मोक्ष पुरुषार्थ होता है। मोक्तुम इक्षु मुमुक्षु, भगवान ऋषभ देव के लिए इस शब्द का उपयोग किया है कि सच्चे मुमुक्षु अगर थे तो भगवान ऋषभ देव थे, जिन्होंने कि सारे पदार्थों को, वही पदार्थों को, सागर तक फैली हुई वसुधा को छोड़ दिया और अपनी सारी संपत्ति को छोड़ करके मोक्तुम इक्षु मुमुक्षु, अपने मोक्ष की, अपनी मुक्ति की कामना को लेकर प्रभवराज जो दीक्षित हो गए थे, ऐसे पहले अगर मुमुक्षु थे तो भगवान ऋषभ देव थे, जिन्होंने कि मोक्ष मार्ग पर चल करके मोक्ष मार्ग की शुरुआत की है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत वही करता है जो मोक्ष मार्ग पर चलता है, खुद चलता है। दूसरे के लिए रास्ता दिखाना बहुत आसान है, लेकिन खुद एक एक कदम चल करके लोगों का आवाहन करना कि आओ मेरे पीछे पीछे आओ, मैं बताता हूँ, खुद चल के बताता हूँ कि रास्ता तो ये है, मैं पहुंच के बताता हूँ कि मोक्ष तो ये है। हमने इस तरह से परिश्रम और श्रम के द्वारा ही मुक्ति मानी है। हम किसी के भरोसे बैठने वाले लोग नहीं हैं कि कोई समय आएगा और हम अनायास मुक्त हो जाएंगे, या कोई समय आएगा और हमें मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, ऐसे किसी का इंतजार हम करने वाले लोग नहीं हैं। एक आदमी की तरह हमारी स्थिति अगर आज है तो समझिएगा कि हम बहुत मुश्किल में पड़ेंगे, मोक्ष मार्ग बन नहीं सकता। अगर आप ये सोच रहे हो उस ठीक आदमी की तरह जो रास्ते के किनारे बैठा हुआ है और आंख नीचे बैठा है, जब लोग उससे पूछते हैं कि क्यों बैठे हो, वो कहता है कि चलना है मुझे और पहुंचना है मुझे। तो कब चलोगे? बोले जब सूरज निकल आएगा तब चलूंगा। आंख बंद किए हुए व्यक्ति रास्ते के किनारे इस बात का इंतजार कर रहा है कि जब सूरज निकल आएगा तब चलूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी पूछना चाहेगा कि ये तो बताओ कि सूरज निकला या नहीं निकला, ये बिना आंख खोले कैसे मालूम पड़ेगा? लेकिन हम इतना भी पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, जब सूरज निकल आएगा तब मैं आंख खोलूंगा और जब आंख खोलूंगा तब मैं चलना शुरू करूंगा। तो ना आप आंख खोलेंगे और ना मालूम पड़ेगा कि सूरज निकला कि नहीं, और ना आप चल पाएंगे। मोक्ष मार्ग के लिए तो कम से कम सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा करनी होगी, इतनी आंख तो खोलना ही पड़ेगी, इसके बाद पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर के मोक्ष मार्ग मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो तीनों से जब भी बनेगा मोक्ष मार्ग, इन तीनों से बनेगा। मानिए ये जो तत्वार सूत्र है ये जैनों की टेक्स्ट बुक है, मैं इसको जैनों का पवित्र ग्रंथ मान के चलता हूँ, बाइबल की तरह इसमें सब कुछ है। लेकिन सवाल ये है कि जब सब कुछ होता है और देखने की आंख ना हो सब कुछ, तो शायद कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। कोशिश करिएगा, इसमें सब कुछ है और इस पर इतनी सारी टीकाएं लिखी गई हैं, मैं कल काउंट करता रहा, 16 टीकाएं लिखी गई सिर्फ एक ग्रंथ पर, और बड़ी से बड़ी टीका जो कि आज नहीं मिलती है, स्वामी समंतभद्राचार्य ने गंधहस्ती महाभाष्य इस तत्वार सूत्र के 353 श्लोकों सूत्रों पर ये टीका लिखी, गंधहस्ती महाभाष्य, जो कि पता लगा है कि कहीं दक्षिण में किसी गुफा के अंदर देवों के द्वारा सुरक्षित है, वो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। हजारों सूत्रों में वो लिखा गया है, इसका भाष्य है, वो पहला वही है गंधहस्ती महाभाष्य। दूसरा है तत्वार्थ अधिगम भाष्य, ये उमा स्वाति नाम के श्वेतांबर आचार्य के द्वारा लिखा गया। दोनों में माना जाता है, तत्वार सूत्र श्वेतांबर दिगंबर में समान रूप से माना जाता है। सर्वार सिद्धि, इसके बाद पूज्यवाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि इस पर टीका लिखी है, और उसके बाद योगिंदी देव ने तत्व प्रकाशिका इस पर लिखी, फिर अकलंग स्वामी ने एक एक पूज्यपाद स्वामी के सूत्रों पर राजवार्तिक लिखी है, और उसके बाद विद्यानंदी स्वामी ने एक एक राजवार्तिक के वार्तिक पर एक एक श्लोक लिख करके श्लोक वार्तिक लिखी है। अब आप थोड़ा सा विचार करें कि एक अकेले सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग पर किस तरह से एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए इतने बड़े बड़े आचार्यों ने व्याख्या करी। ये अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, समृद्ध है बहुत। तत्वार्थ अधिगम भाष्य ये श्वेतांबर साधु हरिभद्र जी ने भी लिखा है, और तत्वार्थ अधिगम भाष्य ये भी सिद्धसेन गणी हुए हैं उनने भी लिखा हुआ है। इस पर अभयनंदी जी ने तत्वार्थ वृत्ति लिखी है, प्रभाचंद्र जी की भी तत्वार्थ वृत्ति मिलती है, और सिद्धांत सार संग्रह ये भी तत्वार्थ सूत्र का सार नरेंद्र सेन ने लिखा है, और सुखबोध वृत्ति अच्छे से सबके समझ में आ जाए भास्कर नंदी ने एक इस पर व्याख्या लिखी है। तत्वार्थ सार दीपक शकल कीर्ति भट्टारक का है, और एक प्रभाचंद की तत्वार्थ रत्न प्रभाकर राम की इसी पर टीका है। एक तत्वार्थ वृत्ति सुत सागर सूरी की है, और एक सुखबोध वृत्ति ये योग देव की है। 16 जो है लोगों ने इस तत्वार्थ सूत्र पर व्याख्याएं लिखी हैं। अब आप ये मान के चलिएगा कि कितना बड़ा हमारा पवित्र ग्रंथ है, और इसीलिए हम लोग इन दिनों में कम से कम नहीं जानते अर्थ, फिर भी भगवान की वाणी है श्रद्धा से पढ़ लेते हैं। हमें अर्थ की उतनी आवश्यकता नहीं है शायद जितनी परमार्थ की है। अकेले अर्थ जानने से परमार्थ नहीं सदता, परमार्थ तो श्रद्धा से सदता है, और अगर श्रद्धा है तो वहां से परमार्थ शुरू हो जाता है। इसलिए श्रद्धा से भी अगर इसको जो लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, सुन लेते हैं नहीं सुन पाते हैं, तब भी मन में भावना भा लेते हैं कि आज मैं सुन पाता, अगर इसको किसी के मुख से पढ़ तो पाते ही नहीं हो। अगर वो इतनी भावना भी कर लेते हैं बैठे बैठे कि मैं इस तत्वार सूत्र को सुन पाता, भगवान की वाणी को सुन पाता, तो मेरा कल्याण हो जाता, तो उनका कल्याण इतने मात्र से भी हो सकता। मैंने शायद आपको कोई बताया हो, कटनी में एक माँ को मैंने पढ़ते देखा है, वृद्धा माँ, 60-70 साल की वृद्धा माँ, और धबला जय धबला और महाधबला के 40 वॉल्यूम लेकर के बैठी और वो पढ़ती। मैं पूछा उनसे कि आपके कुछ समझ में आया, आता है? कहने समझ में कछु नहीं आता। हमने कहा समझ में नहीं आता फिर आप पढ़ते हैं? बोले हाँ, इतना तो समझ में आता है कि भगवान की वाणी है, बस यही सोच करके हम पढ़ते हैं, बाकी हमारे कुछ समझ में आता नहीं कि क्या लिखा है।
वो 16-16 किताबें धवला की और 16 जय धवला की और 8 महाधवला की, 40 वॉल्यूम इतने बड़े बड़े, जिनको कि हम दूर से प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं, वो उनने पूरी की पूरी रोज, मैं देखता था कि सामायिक के बाद 1 बजे से 5 बजे तक मंदिर में बैठी, वो पलटती जाती थी, वो पढ़ती चली जाती। अपने जीवन में उन्होंने यही पढ़ लिया। बोले पता नहीं इन आंखों से मैंने कितनी बुराइयां देखी हैं, कम से कम शास्त्र के 4 अक्षर तो देख लूं, इस मुख से जाने किस किस को गालियां दी हैं, भगवान की वाणी का उच्चारण तो कर लूं, इन कानों से पता नहीं कितने विषय कषाय की बातें सुनी हैं, अपने ही द्वारा भगवान की वाणी पढ़ करके उनका श्रवण तो कर लूं। रही अर्थ की बात, सो अगली जिंदगी अगर ठीक ठीक मिली, थोड़ी बुद्धि मिली, ज्ञान मिला, तो अर्थ भी सीख लेंगे, अभी इस बार तो इतना ही थी। ये सवाल श्रद्धा का है, सिर्फ श्रद्धा का है, इसलिए इस ग्रंथ को आप श्रद्धा की दृष्टि से ही बांचिएगा, पढ़िएगा जितना बन सके। मैंने 10 अध्यायों के बारे में आज के वर्तमान संदर्भ में थोड़ा सा सोचा है, वो भी आपको बता देता हूं कि इन 10 अध्यायों में कोई भी ऐसा विषय नहीं रह गया जो कि आज के विज्ञान में पढ़ाया जाता हो। सारा विज्ञान जो विषय विज्ञान के आज हैं, मानिएगा आप विज्ञान को भौतिक बात से मत जोड़िएगा। मैं आपसे फिर कहूं कि जब भी मैं विज्ञान कहूं, आप उसको भेद विज्ञान मानिए, वितराग विज्ञान मानिएगा, आज का आधुनिक विज्ञान मत मानिएगा। ये भौतिक विज्ञान की बात नहीं है, भौतिक जगत की बात नहीं, ये आध्यात्मिक जगत की बात है, उसका भी अपना साइंस है, उसका भी अपना विज्ञान है। तो विज्ञान अकेले शब्द को बहुत छोटा सा मत बनाइएगा कि ये जो दिखाई पड़ने वाला है कि हमने एटम बम बना लिया, हमने रेडियो बना लिया, हमने इलेक्ट्रिक की खोज कर ली, इसको आप विज्ञान मानते हैं तो भूल जाइएगा, ये बहुत छोटा सा ज्ञान है। भी विशेष रूपे ने ज्ञायते, जहां हम विशेष रूप से एक सुव्यवस्थित तो सुनिश्चित प्रक्रिया देते हैं, वो विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान छोटा मोटा विज्ञान नहीं है, पदार्थ विज्ञान बहुत थोड़ा सा है, उसकी सीमाएं हैं, क्योंकि पदार्थ की सीमाएं हैं, आत्मा असीम है, वो असीम का विज्ञान है। इसलिए विज्ञान शब्द से ऐसा मत करिएगा। फिर भी अपन अगर 10 अध्यायों को 10 विज्ञान से जोड़ें, तो पहला अध्याय जैन फिलॉसफी का, जिसमें कि जैन दर्शन है, फलसफा है, कि किस तरह से प्रमाण और नए के द्वारा 7 तत्वों को जाना जा सकता, ये जैन फिलॉसफी है। दूसरे अध्याय में जैन बायोलॉजी, जैन जैविकी के बारे में जिसे पढ़ना हो वो दूसरा अध्याय पढ़े, जैन ज्योग्राफी के बारे में जिसे पढ़ना हो, जैन भूगोल, वो तीसरा अध्याय पढ़े।
Now you know we put the one I gave it.
ಮಹಿ ನಾಯ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ
नेहरू ने है वो तो मुझे मथे आए नोबिना ना एक छोकरो ने हरी सर के मत मत होए ने नोबिना ना एक छोकरो ने ही प्रवना नु भी तो तो ने हरी सर के मत के आए नोबिना ना पा ए भी सर के मत मत हो हर मत के पति सर के मत मत हो रहन के तो बजा ना मेरा भी सर के मत वाला दिख एमपी बिजनेस सर के मत मत
लोगों की